حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالیٰ کی ملفوظات چل رہے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے اکابر کی جو عادت رہی ہے یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا کسی شیخ طریقت سے جس سے عقیدت اور محبت ہو اور تعلق ہو، اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا، شتر بے مہار نہ رہیں، شتر بے مہار نہ رہیں، آزاد سانڈ کی طرح نہ رہیں، بلکہ شتر بے مہار آدمی خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے ہمارے شیخ مرشد رحم اللہ تعالیٰ کہ میرے شیخ نے مجھے دو پلاٹ دکھائے، جو دونوں میں کچھ ہریالی تھی لیکن ایک میں بالکل جھاڑ جھنکاڑ، بے ترتیب، جانوروں کی غلاظتیں، بے ترتیب، اس کو جھاڑ جھنکاڑ کہتے ہیں، اور دوسرے پلاٹ میں بہترین پھولوں کی کیاری بنی ہوئی، دیکھنے والے کو تسر و ناظرین، دیکھنے والے کو مسرور کر دے۔ حضرت پھولپوری رحم اللہ تعالیٰ نے دکھایا جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے ہمارے شیخ کو، پھر فرمایا دیکھو ان دونوں پلاٹوں میں، دونوں جگہوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں واضح فرق، عرض کیا واضح فرق۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ وجہ آپ ہی بتا دیجئے۔ شاگرد ہمیشہ یہ کہتا ہے، شاگرد قابل وہ نہیں ہو جو جواب دے، قابل وہ کہ آپ بتا دیجئے، کیونکہ وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا استاد اور شیخ اس موقع۔ فرمایا دیکھو ایک کا کوئی مالی ہے اور باغبان ہے اور دوسرے کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایک کی حالت جھاڑ جھنکاڑ کی سی ہے اور دوسرے کی حالت اتنی عمدہ ہے کہ آدمی اس کو دیکھنا چاہے، اس میں بیٹھنا چاہے۔ تو جو مالی ہوتا ہے کسی باغ کا، اس کو خوبصورت کر کے رکھتا ہے۔ کراچی میں بھی ہے، ادھر ہم میرپور خاص سے آتے ہیں، اتنی بہترین وہ باغات میں انہوں نے کاریگری کی ہوئی ہے، خوبصورت بنایا ہوا، دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اسی کو آپ بے ترتیب چھوڑ دیں کہیں سے کہیں بھاڑو۔ یہی کام شیخ کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس کے اعمال کو۔ اعمال تو کرتا ہے، اعمال تو ہر نیک آدمی کرتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے، کہیں کمی کہیں زیادتی ہے۔ مسجد میں تو بہت دیر تک رو رہا ہے، بہت دیر تک، گھر گیا تو اتنا غصہ کرتا ہے کہ آدمی نظر نہیں آتا، پاگل دیوانہ یا بالکل وحشی کی طرح غصہ کرتا ہے، مار پٹائی شروع کر دیتا۔ یہی اخلاقیات کا فقدان۔ حضرت ڈاکٹر لہی صاحب، جن کے یہ حضرت مولانا جانی صاحب بھی مرید رہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحم اللہ تعالیٰ، جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب دامن الرکاتہم کے شیخ تھے، وہ فرماتے تھے کہ آرام باغ کی مسجد میں میرا جانا ہوا، حکیم سعید صاحب وہاں قریب میں بیٹھتے تھے، تو میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان، نوجوان یا جوان، بڑی اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا کہ دعا مانگنے کو بہت پسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے صرف مسجد میں ہی بیٹھ کے نہیں، چلتے پھرتے بھی دعا مانگو، گھر سے نکلے یا اللہ میرے مقصد کی گاڑی مجھے عطا فرما دیجیے، جس نمبر کی گاڑی چاہیے، عافیت سے مجھے منزل پہ پہنچا دیجیے، اس کے لیے قبلہ روح ہونا اور ہاتھ پھیلانے، جو آپ چلتے ہوئے ہاتھ پھیلائیں گے تو کوئی خیرات دے دے گا، کچھ مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلانے گے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے اس کو، یا اللہ میرا کام بنا دیجیے، مجھے عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دیجیے، اور مجھے میری گاڑی جلدی آ جائے، وہ کھڑا ہے 15 منٹ لگ رہے ہیں، جلدی آ جائے گاڑی، مقصد کی بیٹھنے کی جگہ بھی مل جائے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ہر جگہ اللہ کو یاد رکھو، یہ مناجات کرتے رہو، اس کے لیے کوئی اور شرط نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگتے رہو بس، ملے گا بھی، تعلق مع اللہ بھی قائم رہے گا۔ کہتے ہیں اولیاء اللہ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس مولا کریم سے مانگو، اور ہفت اقلیم کی سلطنت بھی چاہیے، ہفت سات اقلیم ممالک، سات ملکوں کی اگر سلطنت بھی چاہیے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ سات ملکوں کی سلطنت دینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جوتے کا فیتہ، تسمہ اور ساری چیزیں دے سکتا ہے، سب اللہ سے مانگو۔ ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، بندے نے ایک جگہ عرض کیا، ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے؟ کتنے کتنے گھنٹے لگاتے ہیں بتائیے، آدھا گھنٹہ بھی ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں، آدھا گھنٹہ تو بہت ہے، लेकिन आधा घंटा कैसे हो सकता है? हर नमाज के बाद 5 मिनट मांग, या 25 मिनट तो हो जाएंगे, 5 नमाजें, कुछ किसी नफिल के बाद ज़्यादा मांग ले। जब आप मांगने लगेंगे, मुझे एक दोस्त ने बताया, जब मैंने अर्ज़ किया कि दुआ मांगने की आदत डालें, नफ्स मांगना नहीं चाहता, नफ्स उठ के भागता है, पर फ़र्ज़ पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ लिया, चलो जल्दी भागे। नफ्स को पाबंद करना है, नहीं मुझे 5 मिनट मांगना है, 7 मिनट, क्या मांगना है? जब मांगना है तो कुछ ना कुछ तो आएगा मुँह में, या अल्लाह मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, मुझे भी अल्लाह वाला बना दीजिए, मेरी दुनिया व आखरत, मेरे बच्चों की, मेरे नहीं तो बच्चे नहीं है तो मेरे वालदेन को खूब शिफा अता फरमाइए, तमाम जितनी सोच सोच के दुआ करें। कुछ नहीं है, उम्मत मुस्लिमा की कैसी हालत है, कोई हम दुआ करते हैं बैठ के, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाई, कश्मीर में मुसलमान किस हालत में, आप मदद फरमाइए, तमाम दुनिया के मफलूकुल हाल जितने भी मुसलमान मकहूर हैं, मजबूर हैं, उनकी मदद फरमाइए, मुझे भी अल्लाह वाला बनाइए। आप ना हमारे शेख बना, सब मांगते हैं ठीक है, ये सब भी मांग लिया, ये नहीं मांगते कि मुझे अपना ख़ास ताल्लुक नसीब फरमाइए, और सब कुछ मांगते हैं, लेकिन या अल्लाह आप अपनी ज़ात की का सही ताल्लुक हमें नसीब फरमाए। हाजी साहब ने बैतुल्ला में जाके दुआ मांगी थी कि कोई तुझसे कुछ, कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा, मैं आपसे आपको मांगता हूँ, आप हमारे हो जाइए, आप हमारे हो जाइए, हमें अपना बना लीजिए। शाह महमूद ने जब सबको कहा था कि आज जो चीज़ें जो ले लेगा, जो जिस चीज़ पर हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी, जो जिस चीज़ पर है, ये बादशाहों का ऐसा ही होता है, उनके कमी नहीं होती, आज की तरह जमहूरी हुकूमत नहीं थी, बादशाहों का बड़ा इकबाल होता है, जो कहते हैं वो कर भी देते थे, जो चीज़ ले, जो किसी ने ग़ुलाम पे, किसी ने लौंडी पे, किसी ने सोने चांदी पर, हीरे जवाहर, जिस चीज़ पे हाथ रखा दरबारियों को चीज़ दे दी गई, दी जाएगी नहीं, हमारे ऐलान किया जाता है फिर वो चक्कर लगा रहा होता है, 20 लाख रुपए मिलेंगे, वो चक्कर लगा रहा होता है, ऐलान तो हो गया, अब मिला नहीं मिला, ऐलान तो हो गया, बड़े सुना चौड़ा करके फौरन दे दी। फिर अयाज को देखा, अयाज तुम कुछ नहीं लेते, क्या बात, महमूद व अयाज ऐसे नहीं, इकबाल बार बार महमूद व अयाज को लाते, महमूद बादशाह थे और अयाज गुलाम, दोनों ने अपने अपने मर्तबे का हक अदा कर दिया। तो बादशाह पूछ रहा, अयाज तुम कुछ नहीं लेते, क्या बात? उसने कहा कि बादशाह आए करीब और आके बादशाह के कंधे पे हाथ रखा, मुझे बस आप चाहिए, मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए। गोया के बज़बान हाल ये शेर पढ़ा कि अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा, ज़मीं मेरी। अगर बादशाह आप मेरे हो जाएं तो ये सारे वज़रा जो हैं, जो चीज़ें ले रहे हैं, ये मेरे जूते पॉलिश करेंगे, और करते थे, जानते थे अयाज कितना मुकर्रब है, मुकर्रब और होता है, ग़ुलाम था लेकिन मुकर्रब था, वज़ीर इतने मुकर्रब नहीं थे जितना अयाज मुकर्रब था, क्योंकि अयाज मिजाज शनास था, क़ुरबानी देने वाला था, सेल्फिश नहीं था बल्कि बादशाह पे क़ुरबान था, खुद गरज नहीं था, लालची नहीं था। बहरहाल हज़रत डॉक्टर साहब ने उस जवान को देखा कि बहुत अच्छी तरह दुआ मांग रहा है, फरमाते मेरा, मैं उससे मोतक़िद हो गया, मेरा एतक़ाद बहुत बुलंद हो गया, आसमानों को जाने लगा। इतनी देर में एक बड़े मियाँ वहाँ से आए, नमाज़ ख़त्म हो गई थी, चल के आ रहे, नज़र कम आता होगा, कुछ टकरा गए, फौरन दुआ वगैरह छोड़ के उसको चिराग पाओ गए, अरे बड़े मियाँ नज़र नहीं आता, अंधे की तरह चलते हो, देखते नहीं बैठा हूँ मैं। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे, जो मेरा एतक़ाद आसमान पर पहुँचा था ज़मीन पर आ गया, कि ये अखलाक नहीं देखे, अभी दुआ मांगने में तो कितना इल्हाउज़ारी कर रहा था, अभी तो चाहिए था कि शायद, अरे बड़े साहब माफ़ कीजिएगा, मैं गलत जगह बैठ गया, आपको तकलीफ़ तो नहीं हुई, तरीक़ा ये था, उल्टा और चिरागपा हो गया, उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहा। तो ये अखलाक, यही चीज़ है कि एक के अखलाक मुज़य्यन हो जाए तो हर जगह अपने आपे में रहता है, वरना कहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा वो इबादत का मुजाहरा, उम्रे पे जाएंगे, हज उम्रे पे जाएंगे, इनसे बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं होता, वापस आ जाओ फजर की नमाज़ छोड़ के सो रहे हैं, फजर की नमाज़ छोड़ के, हाजियों को मैं जानता हूँ जो फजर नहीं पढ़ते, हज करने गए तो एक बात साथियों, इतना उम्रा करें, एक सबसे ज़्यादा उम्रा कौन करता, रिकॉर्ड चल रहा है, सबसे ज़्यादा एक दिन में दो तीन उम्रे, 3-4 दिन के बाद बीमार हो गए। चलो किसने कहा था एक दिन में दो तीन, एक दिन में एक भी ज़्यादा है, हमारे हजरात तो एक दो ऐसे एक हफ्ते का रहना होता है, जाके करते हैं, ये तो करना वाजिब है, पहला उम्रा तो ज़रूरी है, और उसके बाद एक दरमियान में एक 3 दफ़ा बमुश्किल, ताकि आराम भी मिल जाए। और शेखुल हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ सगीरी साहब ने हज उम्रा कदम ब कदम में लिखा है कि ज़्यादा उम्रा से बेहतर है कि तवाफ़ किया जाए ज़्यादा, उम्रा भी करे, तीन दो तीन उम्रे कर ले बहुत, लेकिन ये रेस लगाना, और वहाँ जो लोग रेस लगाते हैं वो यहाँ आके मस्जिदें खाली, यहाँ कोई पहली सफ में बैठने वाला नहीं होता, वो वहाँ से आ रहे थे कल। मैंने सोचा कि ये देखें वहाँ से आ रहे हैं ऐसे बिल्कुल नज़र झुकाए हुए आके से खड़े हो, यहाँ जगह है नहीं आ रहे। मैंने सोचा कभी कभी ये लोग दुकान पे जाके इस तरह चीज़ लेते हैं, यूं करके गए ये चीज़ दे दो भाई, कितनी मोल तोल करते हैं। दुकान भी पहले देखें कौन सी सही दुकान है, तारिक रोड पे नहीं जाएंगे, पता है यहाँ का तो मैार ही ऊँचा है। लालू खेत जाएंगे, लालू खेत में भी वो दुकान जिससे जिसमें चीज़ सस्ती मिलती, फिर उस पर भी मोल तोल करेंगे, चीज़ भी देखेंगे, वहाँ सारी अकलें आ जाती। यहाँ पे ऐसे चुप से आके गुस्सा आता है, कहते मौलवी गुस्सा करता, तुम्हें पहली सफ नज़र नहीं आ रही, तुम ये नहीं देखते कि पहली सफ में जगह है, और तुम यहाँ आके खड़े देख भी नहीं रहे, बताना पड़ता है पहली सफ में जगह है। ये बेनियादी सवाब से है। हज़रत थानी फरमाते थे ये ऐसे ही नहीं हमारे अंदर जलाल आ जाता, हज़रत थानवी फारूकी थे, फरमाते हैं ये जलाल है ना, फारूकियत का एक हिस्सा है। वो उसने ख़त भेजा वहाँ से चुंगी वाले ने, चुंगी का एक तरफ लिखा हुआ हिसाब किताब, दूसरी तरफ खत इस्लाही खत लिख रहा है, वापस कर दिया। ये खत लिखने का तरीका है, तुम क्या अदालत में दरख्वास्त इसी तरह देते हो? ये दीन का, दीन को तुमने इतना कमजोर समझा हुआ है, इतना बेयारो मदद का, ये दीन पे चलने का तरीका है कि तुम इस पर खत लिख के दे रहे हो कि जिसके पीछे लिखा हुआ ऑल फॉल लिखा हुआ है, और उसके ऊपर इस्लाही खत लिखे, यानी कोई उसकी हैसियत अहमियत नहीं है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब को तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीब से देखा, उनके यहाँ जब वो खत आया, एक हमारे दोस्त ने इतना सा खत, एक कापी का सफ़ा होता है ना, आम कापी का सफ़ा, ये क्या फरमाते हैं उलेमा दीन इस मसले के बारे में, नीचे जगह ही नहीं थी। उन्होंने लिखा कि उलेमा दीन एक छोटे से कागज़ में कुछ नहीं फरमाते, वापस कर दिए। कागज़ तो दो कम अज़ कम कि जिसपे वो जवाब लिखें। ये सब सारी बेअहमियती सारी दीन में, फिर इनको कहो तो इनको गुस्सा आता है, इतने बड़े मियाँ हो गए इनको पता नहीं कि पांचे ऊपर रखना, ये भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, कहना पड़ता है पांचे ऊपर कर लीजिए, कहना पड़ता है। 15 साल से जो 50, 55, 60, 65, 70 साल के होंगे अभी तक ये पता ही नहीं है, तो बताइए अगर इस पर गुस्सा आ रहा है किसी को तो गलत आ रहा है। आप भी तो सीखे ना, सारा काम मौलवी के जिम्मे है कि वो आपको हर चीज़ में बताए, और बताए तो भी नहीं करते, अरे वो फलाना तो नहीं कहता, फलाना ये कहता है, आप खुद तहकीक करें भी इस बारे में। दुनिया में हर जगह तहकीक करते हैं, जो कसरे शीरी जाके आप कहिए, यहाँ हमारे बरकत शीरी वाले 800 रुपये में मिठाई देते हैं, कसरे शीरी वाले 1200-1500 में देते हैं, आप लड़ाई कीजिए उनसे, वो कहेगा तुम जाके ले लो बरकत शीरी से, क्यों आए हो यहाँ पे? दुकान जैसी अच्छी होगी चीज़ भी वैसी महंगी होगी, चीज़ अच्छी होगी तो कीमत भी होगी, तो उसमें आदमी जानता है सब मेयार है, तो भी तहकीक करो ना कौन सी चीज़ सही है, सुन्नत क्या है और ज़रूरी क्या है और गैर ज़रूरी क्या है। उठ के आ गए बस, मुंह धोया उठ के आ गए टोपी के बगैर मस्जिद में आ रहे, पाँचा नीचे और सर नंगा है, जिसको खोलना चाहिए था वो ढका हुआ है, जिसको ढकना चाहिए था वो खुला हुआ, आ गए नमाज में। और बातें कहते हैं ये आ जाते हैं, बड़ा मैंने कहा बड़ा एहसान किया, ये भी ना हो ना भाई, ना हो फिर देखो अल्लाह ताला का अजाब कैसे आता है, ना हो ना फिर तुम आके कौन सा एहसान करते हो। अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ताला अपने दरबार में बुलाते हैं, तो दरबार में आने के आदाब सीखो ना, नहीं आते तो कि मौलवी से सीखो बैठो कि हम आते हैं हमें कैसे आना चाहिए, नमाज के सुन्नत का तरीका बताएं, हमारे बाल कैसे होने चाहिए, हमारे गाल कैसे, कोई नहीं पूछता। वहाँ आके लड़ाइयाँ करते हैं, जाके देखिए बिन्नूरी टाउन में बड़े बड़े मदरसों में एक ही मसला है, तलाक और निकाह, तलाक और विरासत, दो ही इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है। किसी को ये पूछना नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा भी हमें बता दें। बहुत कोई सैकड़ों हज़ारों में कोई आता है ऐसा मसला पूछने के लिए कि उसको जो ऐसा जिसको मसला कहते हैं, वरना ये लड़ाई झगड़ा कि तलाक हुई या नहीं हुई, विरासत मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हमें फ़िक्र अता फरमाए और ये शौक़ ज़ौक़ अता फरमाए। और जिस पे बात चली थी कि किसी शेख कामिल के से इस्लाह कराने से, फिर ये सादी सारी फ़िक्रें खुद ब खुद पैदा होती। पुराने पुराने नमाजी हैं, तजवीद दुरुस्त करने की फ़िक्र नहीं है, क़ज़ाए उम्री पढ़ने की कोई फ़िक्र नहीं है, बस नमाजी तो हैं, लेकिन इनसे पूछें आपकी कितनी नमाजें क़ज़ा हैं। आप अगर अभी 10 सूरतें सुनाएं इसमें कितनी गलतियाँ होंगी, अत्तहियात सही नहीं पढ़ते दुरूद शरीफ, ये कैसे होगा? जब किसी को फिक्र इस्लाह की फिक्र होती है तब आदमी ये चीज़ें दुरुस्त करता है कि वाकई मैं तो कितने पानी में हूँ। ये कोई हम तो नहीं करेगा आपको बिन्नूरी टाउन में दाखिला लेना होगा, 12 साल पढ़ना पड़ेगा, आप किसी खारी साहब से 15 मिनट रोज़ाना पढ़ लीजिए, तजवीद दुरुस्त हो जाएगी। क़ज़ाए उम्री नमाज सिर्फ फ़राइज़ है और वाजिब है, कितना आसान है, रोज़ाना अगर आदमी करे। اللہ تعالیٰ میں فکر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.